नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मुस्लिम महिला को तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक सड़क दुर्घटना में 18 की मौत और 19 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। और क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम आज शाम हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर नेहमर भारत तथा ऑस्ट्रिया के कारोबारियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी वियना में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज ऑस्ट्रिया के वियना में औपचारिक स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर भी श्री मोदी के साथ थे। प्रधानमंत्री मोदी दो राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में कल मॉस्को से वियना पहुंचे। श्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आधिकारिक वार्ता से पहले श्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ मुलाकात की और कहा कि आने वाले समय में पहले से ही सशक्त भारत ऑस्ट्रिया की मित्रता और भी प्रगाढ़ होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी चर्चाओं के लिए वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश वैश्विक कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। चांसलर नेहमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रिया में स्वागत करना सम्मान और प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया और भारत मित्र तथा साझेदार हैं। चांसलर नेहमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान वे राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं के लिए उत्सुक हैं। 41 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के फोकल प्वाइंट्स की बैठक आज वर्चुअल माध्यम से हुई। इस बैठक में फरवरी 2023 में संयुक्त रूपरेखा पर बनी सहमति के अनुसार त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति पर चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, नवाचार, ऊर्जा, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के आदान प्रदान सहित सहयोग शामिल है। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कल नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। परिणाम इस महीने की 13 तारीख को घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु में विक्रावंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में तेज मतदान की खबर है। इस वर्ष 6 अप्रैल को डीएम के विधायक एन पुगाझंथे के निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 बजे तक लगभग 51% मतदान की खबर है। बिहार में पूर्णिया जिले के रूपाली विधानसभा सीट का उपचुनाव धीमी गति से चल रहा है। कई इलाकों में बारिश के कारण मतदान प्रक्रिया बाधित हो रही है। 1 बजे तक 39.36% मतदान की खबर है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। अब तक लगभग 52% मतदान की खबर है। उत्तराखंड में चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। दिन में 1 बजे तक बद्रीनाथ सीट पर 33% और मंगलौर सीट पर लगभग 44% मतदान दर्ज किया गया। पंजाब में जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। दिन में 1 बजे तक 34.40% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सभी 4 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हिंसा की बड़ी घटना की खबर नहीं है। अंतिम रिपोर्ट आने तक बागदा में 35.66%, रायगंज में 41.38%, मानिकतला में 33.37% और राणाघाट दक्षिण में 42.19% मतदान हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है।
हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए आज मतदान सुचारू व शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार दोपहर 1 बजे तक इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 48% से अधिक मतदान हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नालागढ़ में सबसे अधिक 51.59%, हमीरपुर में 47.05% और देहरा में 46.47% मतदान दर्ज किया गया है। मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
इस बीच वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का दल चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम रांची पहुंच रहा है। इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्यायाधीश बीबी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने धारा 125 सी आरपीसी के अंतर्गत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने संबंधी निर्देश के विरुद्ध याचिका दायर की थी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि आवेदन लंबित रहने के दौरान अगर महिला को तलाक दिया जाता है तो वह विवाह अधिकार संरक्षण संबंधी 2019 के अधिनियम का सहारा ले सकती है। पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि 2019 के अधिनियम के तहत उपाय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अतिरिक्त है। कर्नाटक में हितधारकों को 1 जुलाई से लागू 3 आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एच सुनील कुमार ने नए आपराधिक कानूनों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह क्रांतिकारी कदम है जो न्याय दिलाने में मदद करेगा।
There are many revolutionary concepts which are brought in on all these laws. One is the community service, which is very revolutionary concept. Crimes against women and children are punishable with maximum up to life imprisonment. New concepts like mob lynching, chain snatching, and inducing a woman for education or inducing a woman for employment or marriage, and then raping her. It has also been made as a punishable offense, which was not there in the IPC.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बांगरमऊ के निकट आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दुग्ध टैंकर के डबल डेकर बस से टकराने से 18 लोगों की मृत्यु हो गई और 19 घायल हो गए। ये बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस क्षतिग्रस्त हो गई और लोग बस से बाहर जा गिरे। पुलिस और अन्य आपातकालीन कर्मी पीड़ितों को वहां से निकालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 0515297067, 9651432703, 9454417447, 8887713617 और 8081211289। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 5 घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ भेज दिया गया है।
घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जो मृतक और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे इस खबर से बेहद दुखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की निगरानी में पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के उचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी सुरंग के पास भारी भूस्खलन के बाद यातायात अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के कोष को कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए परिवर्तित करने के मुद्दे पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे पर आयोग ने राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में देश के पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों, असम, मेघालय, सिक्किम, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में भी यही स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन राय ने बताया कि आने वाले दिनों में चक्रवाती असर में थोड़ा बदलाव के कारण बिहार के कई हिस्सों में बहुत तेज बारिश होगी।
आज 3 मिलीमीटर रेनफॉल का पूर्वानुमान है सभी वाले वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट असम और वेस्ट मेघालय में। अति भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किए हैं ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, असम का बाकी हिस्से, अरुणाचल प्रदेश। परसों तक पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ही आपका बारिश बढ़ जाएगी। सेंट्रल इंडिया में भारी वर्षा ही जारी रहेगा। कल जैसे आपका मानसून का नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा, इससे पहले सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश में कल आपका अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। वेस्ट कोस्ट में आप गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण और घाट रीजन और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी जगह में आपका अति भारी वर्षा का चेतावनी है। दिल्ली में आज और कल लाइट रेन का पॉसिबिलिटी दिए है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज तड़के फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। यहां कल आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। सुरक्षा बल जंगल में आतंकवादियों की तलाशी में जुटे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में होगा। यह मैच शाम 4:30 से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत की युवा टीम आज का मैच जीतकर श्रृंखला में बढ़त बनाने का प्रयास करेगी। भारत ने तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर T20 में अफ्रीकी टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। चेन्नई में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 85 रनों का लक्ष्य केवल 10 ओवर और 5 गेंदों में पूरा कर लिया। विंबलडन में सेंटर कोर्ट पर कल खेले गए पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मशहूर रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर को पराजित किया। शुक्रवार को सेमीफाइनल में उनका मुकाबला विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से होगा। वहीं महिलाओं के एकल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में कल क्रोएशिया की डोना वेकिक ने न्यूजीलैंड की लुलु सुन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे प्रवासी भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मुस्लिम महिला को तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक सड़क दुर्घटना में 18 लोगों की मौत और 19 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। और क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम आज शाम हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।